लेट अस प्रे फॉर द वर्ड.
आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें.
किरण कैन यू प्रे?
स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. हम एक जरूरत के साथ प्रभु, एक खाली हृदय के साथ, एक अपेक्षा के साथ आपके सामने बैठे हैं पिता. जरूरत के स्थान में आज हमसे मिले प्रभु. आपके वचन को अभिषेक के साथ हमारे जीवन में आप बोइए प्रभु, ताकि हम और भी, जैसे हमने गीत को गाया, हम तेरे समानता में बदल सके और तेरे नजदीक आ सके प्रभु, और तेरे मंदिर और पवित्र हो सके. हम धन्यवाद करते हैं पिता. जो शब्द हम सुनते हैं, अभिषेक दीजिए हमारे, हमको एक सही हृदय से उसको ग्रहण करने के लिए भी हमारी मदद करें. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन.
We can read from 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27.
और पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय, उसे 25 से 27 वचन को हम पढ़ेंगे.
You can read from 24 to 27. In Hindi you can read.
24 से 27 वचन को पढ़ेंगे. पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय, 24 से 27 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं. मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता रश में लाता हूँ. ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आपके निकम किसी रीति से निकम्मा ठहरूं.
So Paul speaks about a Christian life as a race here.
और पौलुस यहाँ पर एक मसीही जीवन को एक दौड़ के समान यहाँ पर दर्शाता है.
So one thing he says here is everyone who competes in a game exercises self-control in all things.
और यहाँ पे लिखा है कि हर एक जो उस दौड़ में दौड़ता है वो अपने आप को अनुशासित करता है.
Self-control is something which is coming to my heart in few days back.
और कुछ दिनों पहले संयम जो है अपने आप को अनुशासित करने के बारे में मेरे मन में ये विषय आ रहा था.
So it is very important for us and to in this Christian life to have self-control in doing all things.
और आत्मिक जीवन में सारी चीजों को करने के लिए हमारे जीवन के अंदर संयम होना बहुत ही जरूरी भाग है.
That means I don't allow my body to control me, but I control what my body should do.
और इसका मतलब यह है कि मैं अपने शरीर को मुझ पर प्रभुता या नियंत्रण करने नहीं देता, पर मैं स्वयं अपने शरीर को जो उसे करना चाहे वो चीज करने के लिए उसे मैं नियंत्रित करता हूँ.
That means my body will not tell me what I should do, but I discipline my body to do what God wants it to do.
और इसका मतलब मेरा शरीर मुझसे नहीं कहता कि मैं मुझे क्या करना चाहे, लेकिन मैं मेरे शरीर को कहता हूँ जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता है, अनुशासित करके उसे.
Paul says, if I do not do that, in verse 27, that I will preach to others, but I will be disqualified myself.
और पौलुस कहता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं प्रचार करके भी, लोगों को प्रचार करके मैं अपने आप में अयोग्य ठहरूंगा.
So someone like Paul, who established churches, who spread the gospel so much in so many countries, traveled so much, wrote scripture, if he says something like this, so much fear of God should be there in my life.
और जिसे पौलुस इतना महान व्यक्ति जो कई सारी कलीसियाओं की स्थापना करता है, वचनों को लिखता है और कितने कई जगह पर यात्राओं को करता है प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए, अगर वो ऐसा कहता है तो हमारे मेरे जीवन के अंदर भी एक भय स्थापित होना चाहिए इससे.
So it is good to have that healthy fear of God in our hearts, saying that if I don't discipline my body, I can be disqualified.
और ये एक बहुत ही स्वस्थ से भरा हुआ एक भय हमारे अंदर होना चाहिए कि यदि मैं अपने आपके शरीर को नियंत्रित नहीं करता, अनुशासित नहीं करता, तो मैं अयोग्य ठहरूंगा.
So one area where we can discipline ourselves, which I want to speak today, is about our eating and drinking.
और एक क्षेत्र जिसके बारे में हम अपने आप को अनुशासित करना कर सकते हैं, उस बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है हमारा खाना और पीना.
Because in the next chapter, God speaks about the children of Israel.
और उसके आगे के ही वचन के अध्याय के अंदर परमेश्वर इसराइल जो है उसके बारे में बात करता है.
So I was thinking about the children of Israel who were led out of Egypt through Moses.
और मैं सोच रहा था इसराइलियों के बारे में जो मूसा के द्वारा मिस्र से छुड़ाए गए थे.
And God had a plan that they should रीच द प्रॉमिस लैंड।
परमेश्वर की योजना उनके लिए थी कि उस वाचा के कनान देश में उनको वो लेकर जाए।
एंड ही लेड देम थ्रू द विल्डरनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
और बहुत ही लंबे समय से परमेश्वर ने उनको उस मरुभूमि या जंगल के रास्ते में उनकी अगुवाई की।
बट वी नो वन ऑफ द थिंग्स दे डिड वेरी ऑफन इज दे ग्रंबल्ड एंड कंप्लेन्ड अगेंस्ट गॉड।
और हम जानते बार बार उन्होंने एक चीज बार बार की, वो परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाई और शिकायत उन्होंने की।
So why they complained and grumbled, we need to know why they did that.
और क्यों उन्होंने उतनी कुड़कुड़ाहट की या उन्होंने शिकायत की, उसका कारण हमें जानना जरूरी है।
So one thing which we find is very often they complained about food and drink, eating and drinking.
और एक चीज जो हम पाते हैं कि उन्होंने किस चीज के लिए उन्होंने कुड़कुड़ाहट की या शिकायत की, वो है वो खाना और पीने के बारे में।
So in spite of all the miracles that God did, whenever they felt hungry or they felt thirsty, they were grumbling and complaining.
और यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर के बड़े अद्भुत चमत्कारों को देखा, लेकिन जब कभी वो भूखे और प्यासे हुए, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाहट या शिकायत की।
So what they were saying is, whatever God has done, we will forget. And for us, the most important thing is eating and drinking.
और इसका मतलब ये, वो ये कहना चाह रहे थे, जो कुछ परमेश्वर ने किया है हम उसको भूल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है ये भोजन और ये पीना।
For the people of the world, eating and drinking is the most important thing.
और इस दुनिया के लोगों के लिए ये भोजन या पीना जो है, खाना पीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
But for us, the children of God, we do not consider eating and drinking as the most important thing.
लेकिन परमेश्वर के हम जो संतान हैं या बच्चे हैं, उनके लिए हम अपने लिए खाना या पीना या भोजन को इतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं।
That's why Jesus said, you should not worry about what you shall eat and drink, because for these things the Gentiles eagerly seek.
क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही कहा है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अन्य जाति स्वयं इसकी खोज में बड़ी आतुरता से लगे रहते हैं।
We read in chapter 10 verse 6. Now these things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they also craved.
और 10 अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत के लिए लिखी गई है कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे बुरी वस्तु की लालच न करें।
When we read about that they craved for evil things, we will think that it is something very immoral thing that they craved for.
और यहाँ पे लिखा है कि बुरी वस्तु की लालच की, तो हम सोचेंगे कि शायद कि बहुत ही पाप में ऐसी चीजें उनकी उन्होंने लालच की होगी शायद।
But we can read it in Numbers 11, what happened?
और गिनती 11 के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ। गिनती उसका 11 अध्याय।
In Numbers 11 verse 4 and 5, I just read it in Hindi.
गिनती उसका 11 अध्याय वचन 4 और 5। फिर जो मिली जुलू भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी, और इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें वो मछलियां स्मरण है जो मिस्र से सेतमिंत खाया करते थे, और वे खीरे खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी।
yeah. In verse 6 and 7 also you can read.
और 6 वचन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता।
yeah. So we know that the children of Israel were led through the wilderness and God he made a provision for them in the desert.
और हम जानते हैं कि जैसे ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको मिस्र से निकाला, और उस मरुभूमि के अंदर परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रयोजन को किया।
Every day God used to send manna from heaven every day morning and they used to pick up that manna and eat it.
और प्रति भोर को परमेश्वर उनके लिए मन्ना को देता था, और वो उनको बटोरते थे और उसको मन्ना को खाते थे।
But after some time, they got fed up with this food which God was giving to them from heaven.
और कुछ समय के बाद जो परमेश्वर उस स्वर्ग से मन्ना देता था, उसको खाके वे थक गए।
So we read in the first verses that they complained against God, and the anger of the Lord was kindled, and the fire of the Lord burned among them, and consumed some.
और यहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने इस कारण में वो कुड़कुड़ाते थे, और तब परमेश्वर की आग उन पर उनकी वो क्रोधित हुआ, और उस पर परमेश्वर की आग ने उनको झपट लिया, उस आग में उनको वो भस्म कर दिया।
Then Moses prayed and God allowed the fire to die out.
तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और वो आग जो है वो बुझ गई।
Then after that again they had that greedy desire. That means so much deep rooted was their desire for food.
और इतना सब होने के बावजूद भी उसके बाद तुरंत ही ये इच्छा उनके अंदर आ जाती, तो कितना अधिक उनके हृदय के अंदर ये इच्छाएं ग्रसित वो होंगे।
They were remembering that in Egypt they used to get fish in free of cost, and then cucumbers and melons and leeks and onions and garlic. They were remembering all the food they enjoyed in Egypt.
और मिस्र के अंदर जो भी भोजन वो आनंद उठाते थे भोजन का, वहाँ लिखा है पांच वचन में, जो मछलियाँ मिस्र में सेतमेत खाया करते थे, खीरे खरबूजे प्याज और लहसुन, ये सब कुछ वो स्मरण करते हैं।
That means they were craving for the food.
इसका मतलब जो है उनके अंदर वो भोजन के लिए एक लालसा या बड़ी आतुरता से उसकी लालच वो कर रहे थे।
We all have a desire to have good food and it is okay to have a desire for good food.
और हम सबों के अंदर एक बहुत ही अच्छी इच्छा होती है कि हम एक अच्छा भोजन खाएं, और ये अच्छी बात भी है कि हमारे अंदर ही ऐसी इच्छा होती है।
Because God has given us that appetite to have good food.
और परमेश्वर ने हमें ये भूख दिया है ये कि हम उसको अच्छे भोजन का आनंद उठा सके।
And God has given us a tongue which can taste various kinds of food. That means it is God's will that we enjoy the taste of the food.
और परमेश्वर ने हमको एक जीभ भी दी है जो अलग-अलग स्वाद को, जो भोजन है उसका वो आनंद उठा सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उस आनंद को उठाएं।
But that should not be my God. That should not become a craving in my heart.
लेकिन ये सब कुछ मेरा परमेश्वर नहीं बनना चाहिए, सब कुछ मेरे हृदय की बहुत ही तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए।
What is most important for me is what is God's will for my life.
सबसे मुख्य बात मेरे लिए क्या है वो है परमेश्वर की इच्छा।
So what happened to them we read in Numbers 33, Numbers 11:33.
और गिनती 11:33 में हम पढ़ते हैं कि उनके साथ क्या हुआ।
We see that while the meat was still between their teeth, before it was chewed, the anger of the Lord was kindled against the people, and the Lord struck the people with a severe plague.
वहां लिखा है कि मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत ही बड़ी मार से मारा।
We read about this in Psalms 78.
और इसे हम भजन संहिता 78 में भी इसी वचन को इसी प्रकार पाते हैं।
Psalm 78 verse 30 we read, before they had satisfied their desire, while their food was in their mouth, the anger of the Lord rose against them and killed some of the stoutest ones and subdued the choice men of Israel.
और वहाँ पे इस प्रकार लिखा है भजन संहिता 78 उसके 30 उनकी कामना बनी रही, उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हस्तपुष्टों को घात किया और इसराइल के जवानों को गिरा दिया।
So even when God provided manna for them, God had given them instructions that each person should take only what is required. He had given a quantity they should take each family.
यहाँ तक कि परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना का प्रतिदिन प्रयोजन किया था, लेकिन परमेश्वर की कुछ शर्त भी थी कि प्रतिदिन उनकी जो कोई क्वांटिटी में लेना था उनकी जरूरत के अनुसार।
We read that those who took much, God ensured that they only got as much was intended for them according to the number of their families, and those who took little, God ensured that they had enough for their families. So that is how God ensured that each took manna according to what God had said.
और परमेश्वर ने यह निर्धारित किया कि जिन लोगों ने बहुत ही अधिक मन्ना वहां पे बटोरा था उनके घर के परिवार अगर बड़ा है तो उसके अनुसार वो उनके लिए पर्याप्त था, और जिन्होंने कम बटोरा उनके परिवार उनकी जरूरत के अनुसार वो उनके लिए पर्याप्त था, और परमेश्वर ने इसका सुनिश्चित किया।
So what God was teaching that food is just required to survive and my food should not be very important for me.
परमेश्वर ने यहाँ पे उनको दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे अस्तित्व के लिए हमें जितनी भोजन की ही जरूरत होती उतना ही है, वो हमारे जीवन में मुख्य नहीं होना चाहिए।
We read that about that in Deuteronomy chapter 8 and verse 2 and 3.
और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय वचन 2 और 3.
It says, you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years that he humbled you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. He humbled you and let you be hungry and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord.
इस प्रकार लिखा, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बना और तेरी परीक्षा करके जान ले कि मैं तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, और वो मन्ना जिसे न तू और तेरे पुरखा ही जानते वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है।
So Lord fed them with manna with a specific purpose to make them understand that man will not live on bread alone, but by every word that proceeds from God's mouth.
और परमेश्वर ने उनको मन्ना एक मकसद के साथ दिया, उनको ये दिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा।
So what God was teaching them was like I have a desire to have food. More than that, I need to have a desire to listen to what God wants to speak to me.
और परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि जितनी इच्छा उनके अंदर लालसा पर उस भोजन के लिए, उतनी ही लालसा परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को सुनने की उनके मंदर होनी चाहिए।
Lord, let them be hungry so that he can know what is they can know what is in their hearts.
और परमेश्वर उनको भूखा भी होने दिया ताकि उनके हृदय में क्या है वो उसे जान सके।
How much they desire that food and how much they are craving for that food, God wanted to show them.
और परमेश्वर उनको दिखाना है, दर्शाना चाहता था कि कितने अधिक उनके अंदर वो भोजन के लिए लालसा है।
So that is one thing we need to keep in mind that God wants to discipline us in the area of eating and drinking.
और यह एक क्षेत्र है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि खाने भोजन और पीने के संबंध में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को अनुशासित करें या उसमें हम संयम बरते।
So it is not by our own efforts that we discipline, but it is by by being led by the Holy Spirit.
और ये हमारे प्रयत्नों या यत्नों के द्वारा हम अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होना चाहिए।
It is by listening to God and taking up the cross.
ये परमेश्वर को सुनने द्वारा, उस क्रूस को उठाने द्वारा होगा।
And the principle of that manna applies here that we should not take too much or too little, but according to what we need.
और उस मन्ना का जो सिद्धांत जो यहाँ पे हमें, और बहुत अधिक या बहुत कम नहीं, लेकिन हमारी जरूरत के अनुसार हमें वो लेना चाहिए।
Just because a food is a little tasty, I should not keep on eating it. But there, God's, I should listen to what God wants me to do at that time.
क्योंकि वो स्वादिष्ट है तो बस मुझे उसे खाते नहीं रहना है, लेकिन वहाँ पर प्रभु क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसे सुनना है।
So one more thing we find in the Word of God that the controlling the bodily passions or lusts and controlling the desire for food has a close connection.
और यहाँ पर और एक शब्द वचन के अंदर पाते हैं कि हमारे शरीर की लालसाएं जो होती है और ये भोजन की लालसा, उसके अंदर एक बहुत ही एक संबंध उसके अंदर हम देखते हैं।
Especially in the area of sexual immorality,
खासकर एक सेक्सुअल जो पाप जो होते हैं उसके अंदर के पापों के अंदर।
If I have a easy life and I have lot of eating and drinking habits, I can easily fall into sexual sin.
और बहुत ही आसान, यदि मेरा जीवन है बहुत ही आसान, मैं खाने पीने का बहुत सारे प्रबंध कुछ है, बड़ी आसानी से इन सेक्सुअल पापों के अंदर मैं गिरूंगा।
But in the at the same time, if I discipline myself in the area of eating and drinking, I can control the bodily passions.
और उसके विपरीत, यदि मैं खाने और पीने के अंदर अपने आप को ठीक से अनुशासित करूंगा तो मेरे शरीर की जो लालसा है उसके ऊपर मैं नियंत्रण प्राप्त कर पाऊंगा।
We read that in 1 Corinthians chapter 6.
और उसे हम और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर उसको हम पढ़ते हैं।
Verse 12 says, all things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything.
और वहां पे लिखा है, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं, सब वस्तु मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा।
So although eating is a lawful thing, but I will not allow that to master me.
और यहां तक कि ये जो खाना या भोजन जो है वो बहुत ही उचित बात, लाभदायक बात है, लेकिन मैं उसको कभी भी अपने ऊपर अधिकार या प्रभुता करने नहीं दूंगा।
Verse 13 says, food is for the stomach and stomach is for the food, but God will do away with both of them.
और 13 वचन में लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसका और उसको दोनों को नष्ट करेगा।
Yeah, so it says that food is for the stomach, that means I eat. Food is for my stomach, I am eating.
और इसका मतलब ये कि भोजन पेट के लिए, हमारे पेट के लिए हम उसे खाते हैं।
That means I am eating because I am hungry.
और मैं इसलिए भोजन खाता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ।
And second person is stomach is for the food. That means my stomach is I am always craving for food. That person.
और पेट भोजन के लिए, इसका मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा भोजन की हमेशा लालसा करते रहता है।
But both of these, like the first category who say that I only eat for my stomach, or second category who say that my stomach is for the food, both of them are not right.
और जो भोजन के लिए, जो भोजन पेट के लिए है पहली का जो कैटेगरी है, दूसरा जो पेट के लिए भोजन, ये दोनों ही जो है वो सही नहीं है.
Even if I'm hungry, I cannot allow that to be my master.
और यहाँ तक कि मैं भूखा हूँ, फिर भी मुझे इसको अपने ऊपर प्रभुता या अधीनता करने नहीं देना है.
That's why it says that the body is not for immorality, but for the Lord, and Lord is for the body.
परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है.
That means my body is for the Lord.
इसका मतलब मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर के लिए है.
That is my eating and drinking is to glorify God.
और मेरा पीना, मेरा भोजन, मेरा खाना पीना वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए है.
That means I'm eating not just to when I'm eating I'm not just thinking about my stomach, but I'm also thinking how my body can be used for the glory of God.
और जब मैं भोजन करता हूँ तो केवल मेरे पेट के बारे में ही नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं उसके द्वारा सोचता हूँ कैसे मैं इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा इससे कर सकता हूँ.
That's why it says that. That's why when we read that immediately after telling about eating and food, it says about immorality or sexual immorality.
और यहाँ पे तुरंत 13 वचन में जैसे भोजन खाने पीने के बाद बारे में तुरंत ही वो व्यभिचार के बारे में, लैंगिक पापों के बारे में बात करता है.
So that means there's a close connection with how I'm eating and drinking and my able to control sexual desires.
और इसका मतलब कि मेरा खाने पीने की जो आदतें हैं या मेरे जो शरीर की जो लालसा है, व्यभिचार की बातें, उसके अंदर बहुत ही नजदीकी का संबंध है.
If I'm not able to control my eyes, if I'm lusting with my eyes, or if I'm having that sexual pull, we can start with controlling the in the area of eating and drinking.
और यदि मेरी आंखों को मैं ठीक उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं और उसके साथ में वासना भरी नजरों से देखता हूँ, व्यभिचार भरी नजरों से, तो वहां पर मुझे शुरुआत मेरे खाने पीने की आदतों से उस पर नियंत्रित करने के द्वारा करना है.
We read in Romans 12:1 that our body is are to be we'll go to that verse Romans 12:1.
और रोमियो उसका 12 अध्याय उसके एक वचन में लिखा इस प्रकार लिखा है, और इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावतव बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है.
So this is talking about the sacrifice, holy sacrifice which we have to make presenting our bodies.
और यहाँ पर वो पवित्र परमेश्वर को ग्रहण योग्य हमारे शरीरों का बलिदान करने के बारे में वो कहता है.
We read in the book of Leviticus that when they present the sacrifices, they present each member of the animal one by one.
और लेवी व्यवस्था के अंदर जब हम पढ़ते कि जब पशु का बलिदान करने किया जाता था तो पशु के हर एक अंग को अलग अलग रीति से उसको बलिदान करके वहां पे रखा जाता था.
In the same manner, I have to present each member of my body to God as a sacrifice.
और उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने मुझे मेरे शरीरों के हर एक अंग को अलग अलग रीति से उसके सामने बलिदान करने के रूप में रखना है.
So many times I have thought about my eyes, my tongue, my hands and my legs and all those members, but very few times I have thought about the appetite or the stomach, that area of my body.
और बहुत बार परमेश्वर को बलिदान करने के रूप में मेरी आंखों को, जुबान को, हाथ पैर को मैंने देखा है कि उससे समर्पण करना है, लेकिन मेरी भूख जो है उसको समर्पित या परमेश्वर को देने के बारे में मैंने नहीं सोचा.
So that is also one member of our body that we need to offer to God as a sacrifice.
और ये भी हमारे शरीर का एक अंग है जिसे हमें एक बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाना है.
Which has a lot of control over me, I will not allow it to rule me.
और ये हमें कहना है कि ये पेट जो है, जो भूख है मुझ पर, जो नियंत्रण करता है, उसे मैं अनुमति नहीं दूंगा कि वो मुझ पर प्रभुता करे.
Because we read in Philippians 3:19.
क्योंकि हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों उसका 3:19 में.
Says there's a phrase there. It says whose God is their appetite.
और वहाँ पर ये वाक्य लिखा है कि उनका जो ईश्वर है वो पेट है.
That means if my appetite says something, I will obey it.
इसका मतलब जो मेरी भूख है उसी का मैं पालन करता हूँ.
And if my appetite is not satisfied at the correct time, I will get angry.
और यदि एक सही समय पर मेरी भूख संतुष्ट नहीं होती है तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा.
If the food is not according to my taste, I will complain.
और यदि भोजन जो है वो मेरे स्वाद के अनुसार टेस्टी नहीं है तो मैं फिर उसकी शिकायत करने लगूंगा.
If I'm eating and somebody disturbs me, I will get angry.
और अगर मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करता है उस समय में, तो बहुत ही मैं क्रोधित हो जाऊंगा.
Because I'm worshipping the food and somebody should not disturb me.
और क्योंकि मैं जो भोजन जो है उसकी आराधना कर रहा हूँ और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए.
So if that is there in my heart, I need to ask God to cleanse me from that and to present my body, the appetite to God and not make appetite my God.
और यदि ऐसा है तो मुझे परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु उस भूख को, उस बातों से मुझे तो शुद्ध कर, वो प्रभुता, वो पेट या वो जो भूख जो है मुझ पर प्रभुता न करे.
Although we say all these things, but one thing we are not saying that we should never enjoy good food or we should never enjoy taste of good food.
और इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी भी अच्छा जो स्वादिष्ट भोजन है या अच्छा ये है उसका आनंद नहीं उठाना है.
We know about Jesus that people in Luke 7:34 he was called a gluttonous man and a drunkard.
और लूका 7:35 के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उसे पेटू और पेकड़, इस प्रकार लोग उसको कहते थे.
Jesus said the son of man came eating and drinking.
और वहां पर लिखा गया है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है.
That means Jesus is to enjoy good food and with if people gave him a very good party, he will enjoy food and he will eat and he will not avoid eating.
और इसका मतलब यीशु मसीह जो है अच्छा जो खाना पीना स्वादिष्ट है जो लोग उसे देते थे या पार्टी है या वहां पर, वो उसको डिनाई नहीं करता था लेकिन उसका आनंद उठाता था जरूर.
So we should not act in a different way like saying that I will not eat food or I will eat less before people to act spiritual.
और हमें आत्मिक दिखावा करने के लिए बहुत ही आत्मिक हम है इसको दिखाना कि लोगों के सामने मैं जो स्वादिष्ट भोजन है मैं इसे नहीं खाऊंगा या इसको इस तरह से, इस प्रकार नहीं करना है.
But we see a balance in the life of Jesus.
लेकिन हम यीशु के जीवन में एक संतुलन को देखते हैं.
The same person who people called a glutton, he was able to fast for 40 days.
और जिस व्यक्ति को लोग पेटू और पेकड़ कहते हैं वही व्यक्ति 40 दिन तक उपवास भी कर सका.
And we read in Mark 3:20 that many times he did not have time to eat food because he was serving the people and he was healing the people. Sometimes he would skip his food because of that.
Markus 3:20 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को समय नहीं होता था, यहाँ तक कि लोगों को चंगाई देने में, वो सेवकाई के कार्य में समय नहीं होता था और वो भोजन नहीं कर पाता था.
So that is one thing we see in the life of Jesus.
और ये एक चीज जो हमें यीशु मसीह के जीवन में देखना है.
We also read in the story of Samaritan woman in John 4 that when Jesus, when the disciples went to eat, Jesus was sitting by the well and speaking to the Samaritan woman.
और सामरी स्त्री की कहानी में हम पढ़ते हैं कि जब जो शिष्य जो है वो भोजन लेने के लिए शहर में गए और यीशु वहाँ पर बैठकर सामरी स्त्री से बात करता है.
So that is something we need to take into heart that we need to not allow that food to control us like Jesus did.
और हमें वो यीशु मसीह के समान उस भोजन को हमारे ऊपर नियंत्रित होने नहीं, हमें नियंत्रण करने नहीं देना है.
So later Jesus said when the disciples came back, Jesus said that I had food.
और जब शिष्य वापस लौटते हैं, यीशु मसीह उनको कहता है कि मैंने
नहीं, मेरा नहीं, नहीं, आवाज.
Yeah, Kiran.
Yes. Can you repeat, brother?
Yeah. When Jesus came back, he said that I had food.
जब उसके शिष्य वापस लौटे तो यीशु ने उनसे कहा कि मैंने मेरा भोजन मेरा हो चुका है.
Then disciples asked him, did someone give you food?
और फिर शिष्य ने उसको पूछा क्या किसी ने तुम्हें भोजन दिया, किसी ने लाकर?
Then Jesus said, my food is to do the will of the Father and to fulfill my task.
तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा और उसके दिए हुए कामों को पूरा करना है.
So that is Jesus was saying that more important than eating food is to do the will of my Father.
यीशु उनसे कहता है कि इस भोजन से बढ़कर मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना जरूरी और महत्वपूर्ण है.
We see the similar attitude in the life of Apostle Paul.
और यही स्वभाव हम जो प्रेरित पौलुस है उसके जीवन में भी हम देखते हैं.
In Acts 27 we'll just read that Acts 27 verse 33. we know the story where Paul was traveling in a ship with many prisoners.
और यहाँ पर प्रेरितों के 23 अध्याय के अंदर हम पौलुस के बाद देखते हैं कि और बंदी वानों के साथ वो उस जहाज के अंदर यात्रा करता है.
And 14 days they had no food.
14 दिन तक उनके पास कोई भी भोजन नहीं था.
And Paul somehow had some food with him.
और पौलुस के पास कहीं ना कहीं से उसके पास थोड़ा भोजन था.
And he thought of sharing that food with others and giving it to others because he thought that others are also hungry. Let me give it to them.
और वहां पर उस भूख के अंदर पौलुस ने सोचा कि वो भोजन जो है वो औरों को भी देगा ताकि और भी जो भूखे वो इस भोजन से तृप्त हो सके.
So that can only be done if I don't consider my appetite so important.
ये तभी व्यक्ति कर सकता है जब वो अपनी भूख को महत्वपूर्ण नहीं समझता है.
So we need to consider these things and especially since Jesus said in the last days people will be eating and drinking.
और यही चीज को हमें ध्यान में रखना है जब यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में लोग खाने और पीने वाले होंगे.
Like it will be like the days of Lot and it will be like the days of Sodom and Gomorrah.
और ये लूत और सदम और गमोरा के जो लोग हैं उसके समय के अनुसार वो होगा.
And it will be like the days of Noah.
और उस नूह के समय के लोगों के समान वो होगा.
In both these in this situations people were eating and drinking.
और यहां दोनों ही जगह के जो लोग थे वो भोजन खाने और पीने में वो आगे थे.
And due to that, they fell into immoral life.
और उसी के कारण के वो बहुत ही एक immoral या बहुत ही व्यभिचार से भरे जीवन के अंदर वो पड़े.
And it is also good to ask God's grace to practice the discipline of fasting.
और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना भी जरूरी है कि हम जो उपवास का जो अनुशासन हमारे जीवन में लागू कर सके उसको व्यवहार में ला सके.
Because Jesus said in Matthew 9:15-17.
यीशु मसीह ने मत्ती 9 में इस प्रकार कहा है.
Matthew 9:15-17. It says that when the bridegroom, we see in last part of 15, that when the bridegroom, days will come when the bridegroom is taken away and then they will fast.
और वहां पे 15 वचन मत्ती 9:15 के अंतिम भाग में लिखा है, पर वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय में वो पास करेंगे.
So Jesus was saying that there will be a time when I'll be taken up, which is now.
और जब वो यीशु कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास से ले लिया जाऊंगा वो समय अभी है.
That is now those who are the children of God, those who are waiting for the coming of Christ, they will fast.
और अब जो बच्चे हैं परमेश्वर की संतान जो है जो यीशु मसीह के आने की बाट जोते वे ही हैं जो उपवास करेंगे.
They fast because they desire the presence of God in their life.
वे इसलिए उपवास करते थे क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति को उनके जीवन में उसकी लालसा करते थे.
But it is not a fast which Pharisees had.
लेकिन ऐसा उपवास नहीं करेंगे जो फरीसी लोग करते थे.
Because Jesus said in Matthew 6 that when you fast do not put on a gloomy face but be a cheerful, put on a cheerful face and let your fasting be in secret so no one knows that you are fasting.
और जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 6:16 में कहा कि जब तुम उपवास करो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने.
So that is what God wants to secretly have times of fasting before God.
और यही परमेश्वर चाहते कि गुप्त रीति से परमेश्वर के सामने से उपवास के समय को रखे.
And that can help us preserve us in these times.
और यही है जो हमें इन दिनों के अंदर सुरक्षित बनाए रखेगा.
May God help.
प्रभु हमारी सहायता करे.
Thank God for what you heard today.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो हमने आज सुना उसके लिए.
I've been to a doctor once for I had this problem with my I thought it was a heart problem but I went to this doctor to check if I really had a heart problem.
और एक बार मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया. मुझे लगा वो हृदय से संबंधित कोई बीमारी होगी और इसलिए मैं उसको चेक करवाने के लिए गया.
So no, so talking about food part, no, he told me one thing, you know, like whatever we eat, no, it's still your tongue, you know, but once that food passes your tongue and goes inside your body, there is no taste. That taste is only till the tongue.
और उस डॉक्टर ने मुझसे कहा जो तुम्हारा चखने का या स्वाद करने का जो काम है वो बस तुम्हारे जीभ पर है एक बार उस खाने ने उस जीभ को पार कर वो अंदर चले गया, उसके बाद उसका स्वाद है या नहीं तुम्हारे शरीर को नहीं पता.
Right, it goes inside and what is useful is taken by the body. Rest is, you know, it's thrown out.
और उसके बाद जब भोजन तुम्हारे अंदर जाता है तो जो कुछ उपयुक्त है उसको तुम्हारा शरीर ले लेता है और बाकी सारी चीजों को वो बाहर फेंकता है.
Sometimes I feel like, you know, like all my whims and fancies are in that eating part thing is all your tongue that goes to the brain.
Sorry, brother.
All the whims and fancies, you know, like the things I like or some of the things I don't like, it's all in that tongue that goes to my brain, you know.
और कई बार जो मेरी चाहते हैं, मैं क्या पसंद करता हूँ या ना पसंद करता हूँ, वे सब चीजें मेरी मेरी जीभ पर आधारित है और वही उसी बारे में मैं सोचता हूँ.
But you know, as brother Danny was sharing, you know, like the Bible says, our body is a temple of God.
और जैसे भाई डैनी अभी बता रहे थे, हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है.
You know, like even you see this Hindus, you know, like they'll usually say temples. They'll keep the temples clean, you know, whitewashed, you know, whatever it is. They'll keep it clean because they think that God is there.
और यद्यपि हम विदर्भी लोगों को देखते हैं तो वो उनके जो मंदिर होते हैं उनके मंदिरों को वो बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनका परमेश्वर वहाँ रहता है.
But you know, when Jesus, you see about Jesus, when he came to temple, first, you know, the thing that he did, he removed all the people who were doing business and all that. He first cleansed the temple.
और जब हम यीशु मसीह को भी देखते हैं, जब वो पहले बार मंदिर में जाता है, तो उसने जितने लोग वहाँ पैसे कमा रहे थे, उन सबको बाहर निकाल दिया और उसने सबसे पहले उस मंदिर को शुद्ध किया.
So same thing, you know, like God wants when He has to reside in me, first, you know, He cleanses everything that is there in my heart.
और वैसे ही जब परमेश्वर मेरे अंदर रहना चाहता है तो वो भी चाहता है कि मेरे हृदय में जो कुछ है मैं उसकी साफ सफाई करूं.
You know, it's there's a verse in Jude.
और यहूदा में एक वचन है, यहूदा की पत्री.
चैप्टर 1 वर्स 24.
यहूदा की पत्री पहला अध्याय और उसका 24वां वचन.
There's a verse 24 is given. It's a prayer actually, but you see, it says, "Now to him who is able to keep you from stumbling, to make you stand in his presence of his glory, blameless and with great joy."
और ये एक प्रार्थना है और वहाँ लिखा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है.
The first thing, he can keep you from stumbling.
पहले तो लिखा है कि वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है.
Second, he can make me stand in his presence. He's a holy God, and he can make me stand in his presence.
और दूसरा मतलब वो मुझे खड़ा कर सकता है अपने उसके महिमा में, उसके उपस्थिति में वो मुझे खड़ा कर सकता है. वो पवित्र परमेश्वर है और वो मुझे पवित्र करके उसके सामने खड़ा कर सकता है.
Third is part is saying he can make me blameless, without sin, blameless, nothing on me.
और तीसरी चीज यहाँ लिखी है कि वो मुझे निर्दोष खड़ा कर सकता है, जिसका मतलब मेरे अंदर कोई भी दोष लगाने जैसा कुछ भी नहीं होगा.
And fourth is with great joy.
और चौथा मतलब यहाँ लिखा है मगन या बहुत खुशी से वो मुझे वहाँ खड़ा कर सकता है.
So all these things, you know, God can do in my life. He can help me from stumbling in the area of food, any area which I'm going wrong, he can help me, you know, from stumbling.
और इसलिए ये सारी चीजें हैं जो परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है. मेरे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है, वो भले ही मेरे खाने के बारे में खाने का क्षेत्र क्यों ना हो.
Anything, you know, like it doesn't mean like food part of it, but any part of my life where I'm going wrong, God can help me and I won't stumble.
सिर्फ यही क्षेत्र नहीं, मेरे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो जहाँ कहीं मैं गलत हो रहा हूँ, परमेश्वर मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है.
You know, I was thinking, you know, like speaking of self-control, you know.
और अपने आप पर काबू रखने के बारे में मैं सोच रहा था.
You know, like we see, like your brother Daniel was sharing about the Israelites. 40 years they were roaming around, you know, and God provided them food, and they were unhappy because the food was not right.
और हम इसराइलियों के बारे में अभी भाई डैनी ने जैसे बताया कि वो 40 साल उस जंगल में थे और खाने के बारे में वो कई बार कुरकुर करते थे.
They wanted something better, you know, something good for taste and all that water thing does.
और वो हमेशा चाहते थे कि उन्हें उन्हें कुछ और अच्छा मिले भोजन के लिए, उनको जो चखने में स्वाद में अच्छा हो.
But you know these things, but they didn't really realize one thing. Like when it said 40 years they were around, you know, this the sandals that they're wearing didn't wear off. Now their clothes, you know, they were wearing that those years, they didn't tear and nothing happened. It was God who was taking care of all those things.
पर उनको ये बात स्मरण नहीं हुई, उनको ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने जो चप्पल पहने थे, जो जूते पहने थे, 40 साल तक वो खराब नहीं हुए, जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो फटे नहीं, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीजों को नियंत्रित कर रहा था.
And the daytime they had a cloud upon them, and the night they had a fire, the light to show them, guide them.
और दिन में उनके ऊपर एक स्तंभ होता था और रात में एक अग्निस्तंभ होता था जो उनकी अगुवाई करता था.
These all things were there, but they only saw the part of food.
ये सारी चीजें उनके साथ थी, परमेश्वर ने उनके लिए ये सब किया था, पर वो सिर्फ भोजन के बारे में ध्यान दे रहे थे.
Because that was something important to them. It was not what God was providing. How they were living, surviving that 40 years, that was not important. But important were their, you know, things. I want this, I want that.
वो सिर्फ भोजन पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि भोजन उनके लिए बहुत जरूरी था. उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि परमेश्वर कैसे हमें संभाल रहा है, 40 साल वो कैसे हमें चला रहा है, पर बस ये कि मुझे क्या चाहिए खाने के लिए.
You know, they couldn't see that love of God, you know, who got them out of Egypt and he was taking them to the promised land.
और जो परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर छुड़ाकर उस कनान देश तक ले जा रहा था, उसके प्रेम को वो नहीं देख पा रहे थे.
No, the verse just the verse in Jeremiah chapter 31.
और यिर्मयाह उसके 31 में एक वचन है.
And chapter 31 verse 3.
यिर्मयाह 31 और उसका तीसरा वचन. यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है.
He says, no, I have loved you with an everlasting love. That love will never fail. No? It won't stop.
और यहाँ लिखा है कि मैंने तुझे सदा से प्रेम किया है और उसका प्रेम कभी रुकता नहीं, वो कभी उसके प्रेम को रोकेगा नहीं.
And says, with an unfailing love, I have drawn you to myself.
और मैंने इस प्रेम से तुझे अपनी ओर खींच लिया है.
You know, God has brought us closer to Him. It is by His grace we are saved. You know, it is His love that, you know, He helps us every day, each day to walk this way that
परमेश्वर,
is serious.
और परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया है और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और उसके प्रेम से वो हर दिन हमारी अगुवाई कर रहा है.
The reason, the most important thing is, first is I finding God in my life. I help inviting God to come. God, come and please reside in me. You know, just let your Holy Spirit guide me. It really reside in my heart and speak more about your love.
और पहले तो हमें परमेश्वर की खोज करके कहना है कि परमेश्वर सचमुच तू आ और तेरे पवित्र आत्मा को आकर मेरे अंदर रहने दे और मैं अधिक तेरे प्रेम को समझ पाऊँ.
No, it's I should know God more. I should have that fellowship with Him and walk with Him.
और मैं सचमुच परमेश्वर को और नजदीक से मुझे जानने की जरूरी है कि मैं उसके साथ सहभागिता रखूं और नजदीकी से उसके साथ मैं चलूं.
And God is really interested in this love what we have for Him. He's not interested in what we do, what our activities are, what the things that are, what are our strengths. No, He's just interested in our love. He just sees our heart. That's all.
और परमेश्वर भी सचमुच इसी चीज में रुचि रखता है कि हमारे उसके प्रति कितना प्रेम है, हम उसके लिए क्या करते हैं, और जो कुछ हमारे बाकी के काम है उसमें उसको इतनी रुचि नहीं है. वो हमारे हृदयों को देखता है, हमारे प्रेम को वो देखता है.
So like even sometimes I've seen in my life where certain areas as falling and I tried as God I overcome this area but I never could, but when God took over my life I could become an overcomer.
और मैंने अपने जीवन में भी देखा कि कुछ क्षेत्रों में जब मैं बार बार वही गिरता रहता और मैं सोचता था कि मैं कभी भी इसको इस क्षेत्र में विजय नहीं पा सकता, पर जब मैं परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित अपने जीवन को करता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मैं सचमुच एक विजयी जीवन जी सकता हूँ।
That's why it says now God who can help us from stumbling, make us stand in His presence, and who can really make us blameless, and He can put a great joy in our heart. To Him be glory forever and ever. Amen.
और इसलिए यहाँ लिखा है कि वो परमेश्वर जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, वो हमें खड़ा कर सकता है, हमें वो उसके उपस्थिति में निर्दोष रखकर हमारे दिलों में खुशी रख सकता है, और ऐसे परमेश्वर को गौरव होने दो युगान और युग। आमीन।